लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मानव व्यक्ति की गरिमा पर हमला करने वाले मृत्यु दंड का प्रत्येक देश में कानूनी रूप से उन्मूलन किया जा सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न है। यह ग्रंथ सभी मनुष्यों के लिए प्रज्ञा का आमंत्रण है। बुरी योजनाएं बनाने वालों के मन में कपट, किंतु शांति समर्थकों के मन में आनंद है। धर्मियों के सिर पर विपत्ति नहीं पड़ेगी, किंतु दुष्ट कष्टों से घिरे रहते हैं। प्रभु को झूठ बोलने वालों से घृणा है, किंतु वह सत्य बोलने वालों पर प्रसन्न होता है। श्रोताओं, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 12वें अध्याय के 20वें, 21वें और 22वें पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत हमने इन्हीं पदों की विस्तृत व्याख्या की थी। यहां इस बात के प्रति हमारा ध्यान आकर्षित कराया गया है कि बुरी योजनाएं बनाने वालों के मन में कपट है। वे मित्रता के रंग में बुराई की कल्पना करते हैं, परंतु अंत में यही सिद्ध होता है कि वे खुद ब खुद अपने आप को धोखा दे रहे थे। वे इस भ्रांति में पड़े रहते हैं कि इससे उन्हें लाभ होगा और संतुष्टि मिलेगी, लेकिन यह सब धोखा है। यह सब उनका भ्रम मात्र होता है। भले ही दुष्ट धूर्तता से कुयोजना बनाता है और अपनी कूट बुद्धि से षड्यंत्र रचता है, तथापि धोखा तो धोखा ही है और धोखा देने वाले को धोखा ही होगा। इसके विपरीत शांति समर्थकों के मन में सदैव आनंद व्याप्त रहेगा। ऐसे लोग जो शांति की राहों पर आगे बढ़ते, जो शांति स्थापना के लिए प्रयत्न किया करते हैं और अपनी हैसियत के हिसाब से शांति निर्माण में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को आश्वासन दिया गया है कि उनका मन सदैव आनंद से भरा होगा। वे आनंद और सफलता के पात्र होंगे। उनके कार्य उनकी अपेक्षा के परे फलप्रद होंगे, क्योंकि यीशु ख्रीस्त भी कहते हैं, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। सूक्ति ग्रंथ का लेखक फिर कहता है कि धर्मियों के सिर पर विपत्ति नहीं पड़ेगी, किंतु दुष्ट कष्टों से घिरे रहते हैं। श्रोताओं, धार्मिकता या पवित्रता एक निश्चित सुरक्षा है। धर्म परायण मनुष्यों के लिए प्रभु ईश्वर ने ठहराया है कि उनके साथ कोई बुराई न हो। ईश्वर उनमें अपने अनुग्रह की शक्ति से न्याय और शांति के बीज आरोपित कर उन्हें पाप की बुराई से बचा लेते हैं, ताकि चाहे वे परीक्षा में पड़ें तो भी उन पर कोई आंच नहीं आने पाए। उन पर भले बहुत सी विपत्तियां आएं, तो भी उन विपत्तियों से उनके विरुद्ध कोई बुराई न हो, क्योंकि प्रभु हर क्षण धर्मी की सहायता करते हैं और हर विपत्ति से उसे छुड़ाते हैं। दूसरी ओर दुष्टता निश्चित रूप से विनाश का रास्ता है। जो लोग ईश्वर और मनुष्य की अवमानना करते तथा शरारत करने में लगे रहते हैं, वे खुद अपनी शरारतों के जाल में फंसते हैं। संत पॉल लिखते हैं, उन्होंने ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना उचित नहीं समझा, इसलिए ईश्वर ने उन्हें उनकी भ्रष्ट बुद्धि पर छोड़ दिया, जिससे वे अनुचित आचरण करने लगे। वे हर प्रकार के अन्याय, व्यभिचार, लोभ और बुराई से भर गए। वे ईर्ष्या, हत्या, बैर, छल कपट और दुर्भाव से परिपूर्ण है। 22वें पद में लेखक कहता है, प्रभु को झूठ बोलने वालों से घृणा है किंतु वह सत्य बोलने वालों पर प्रसन्न होता है। झूठे लोगों से प्रभु को घृणा है, इसलिए मनुष्य भी झूठ से दूर रहे, झूठ से नफरत करे और सदैव सच बोले। झूठ बोलना केवल ईश्वर के नियम का उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह मानव समाज के लिए भी विनाशकारी है। कहने का तात्पर्य यही कि हम केवल शब्दों से ही नहीं अपितु अपने कार्यों से भी सत्य बोलें। अपने व्यवहार में हम ईमानदारी बरतें, क्योंकि केवल ईमानदार पर ही भरोसा किया जा सकता है और ईमानदार ही मनुष्य के कल्याण के प्रति अग्रसर रहता है और ईश्वर के अनुग्रह का पात्र बनता है।
ईश्वर 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 ओम
ईश्वर ईश्वर ईश्वर
ईश्वर ईश्वर ईश्वर ओम
ईश्वर 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 ओम।
आगे सूक्ति ग्रंथ के 12वें अध्याय के 23वें, 24वें और 25वें पदों में लेखक कहता है, बुद्धिमान अपना ज्ञान छिपाए रखता किंतु मूर्ख अपनी मूर्खता घोषित करता है। परिश्रमी शासक बनेगा किंतु आलसी को बेगार में लगाया जाएगा। मन की चिंता मनुष्य को निराश करती है किंतु एक सहानुभूतिपूर्ण शब्द उसे आनंदित कर देता है। इन पदों में इसी तथ्य के प्रति ध्यान आकर्षित कराया गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रचार नहीं करते, वे अपने विवेक का ढिंढोरा नहीं पीटते, वे अपनी बुद्धि से अन्यों को प्रभावित करने का प्रयास कदापि नहीं करते और इसी में उनका गर्व और सम्मान निहित होता है। वह अपने ज्ञान का संचार तब करते हैं जब वह दूसरों के भले के प्रति अभिमुख होता है, अपनी प्रशंसा में नहीं लगते बल्कि सभी वरदानों के लिए प्रभु ईश्वर को अनवरत धन्यवाद ज्ञापित किया करते हैं। बुद्धिमान व्यक्तियों के ठीक विपरीत मूर्ख लोग होते हैं। जो मूर्ख है वह अपनी मूर्खता का प्रचार करने से नहीं बचता। मूर्ख अपने शब्दों से, अपने कार्यों से मूर्खता की घोषणा करता है। अपनी मूर्खता को छिपाना वह आवश्यक नहीं समझता, इसलिए उसमें भले और बुरे तथा मान सम्मान और अपमान में अंतर की समझ कम ही होती है। आगे 24वें पद में लेखक कहता है कि परिश्रमी शासक बनेगा किंतु आलसी को बेगार में लगाया जाएगा। श्रोताओ, उद्योग वरीयता का एक तरीका है। राजा सुलेमान ने यरोबआम को आगे बढ़ाया था इसलिए कि उन्होंने उसमें एक मेहनती युवक को देखा था जो अपने व्यवसाय पर ध्यान देता था। प्राचीन व्यवस्थान में निहित राजाओं के पहले ग्रंथ के 11वें अध्याय के 28वें पद में हम पढ़ते हैं, यरोबआम सुयोग्य और वीर व्यक्ति था। जब सुलेमान ने देखा कि वह एक कार्यकुशल युवक है तो उसने यरोबआम को यूसुफ अर्थात मनस्से और इफ्राइम वंश में होने वाले समस्त निर्माण कार्य का निरीक्षक नियुक्त कर दिया। श्रोताओ, जो मनुष्य कष्ट उठाकर भी अध्ययन और निष्ठापूर्वक सेवा से योग्य और सक्षम बनते हैं वे अन्यों के लिए रुचिकर बनेंगे तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। ऐसी प्रतिष्ठा जो उन्हें अपने चारों ओर एक प्रभुत्व प्रदान करेगी। इसी प्रकार से वे बुजुर्ग जिन्होंने वचन और सिद्धांत में परिश्रम किया है दोहरे सम्मान के योग्य हैं, और जो व्यक्ति जवानी में परिश्रमी होते हैं उन्हें राज्य करने के योग्य माना जाएगा तथा वे अपने कार्यों के द्वारा अपनी वृद्धावस्था में भी आराम पाएंगे। इनके विपरीत वे व्यक्ति हैं जो परिश्रम नहीं करना चाहते, किसी प्रकार का दर्द नहीं सहना चाहते और बेईमानी से जीने को एक कला समझते हैं। वे अपने आलस के कारण बेगार में लगाए जाएंगे। आलसी और लापरवाह या यूं कहें कि धोखेबाज व्यक्ति हमेशा अन्यों के अधीन रहेगा। आगे 25वें पद में लेखक कहता है, मन की चिंता मनुष्य को निराश करती है, किंतु एक सहानुभूतिपूर्ण शब्द उसे आनंदित कर देता है। इन शब्दों में उदासी का कारण और उसका परिणाम बताया गया है। यह हृदय पर रखे एक बोझ के सदृश है, देखभाल और उत्कंठा का बोझ, भय का बोझ और दुख का बोझ, जो मनुष्य को निराशा और अवसाद में डूबने के लिए मजबूर कर देता है। तथापि लेखक कहता है कि एक भला शब्द, एक मीठा बोल, विश्वास के साथ कहा गया एक शब्द मन को आनंदित करता है। लेखक यही कहना चाहता है कि हम ईश्वर पर विश्वास कर अपने काम करें, ताकि हमारा मन प्रसन्न हो और हम संतुष्टि का अनुभव प्राप्त कर सकें। सुसमाचार में ऐसे कई शब्द हैं, ऐसे कई वाक्य हैं, जो मन को प्रसन्न और प्रफुल्लित कर देते हैं। संत मत्ती रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय में विश्वासियों को इसी प्रकार का आश्वासन दिया गया है। लिखा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और अपने से सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। इस प्रकार श्रोताओं, विनम्र और विनीत बनकर प्रभु ईश्वर से प्रार्थना की जाए तथा उनमें अपने विश्वास को सुदृढ़ किया जाए। यही है आनंद और शांति की कुंजी।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। कैथोलिक कलीसिया आज कुंवारी मरियम का जन्म दिवस मनाती है। संत पापा फ्रांसिस ने इस पर्व दिवस के अवसर पर यीशु के मिशन में माता मरियम की पूर्ण सहभागिता की याद करते हुए सभी माताओं के प्रति अपना विशेष सामीप्य व्यक्त किया। उन्होंने 8 सितंबर को एक ट्वीट प्रेषित कर कहा, मरियम ने अपने पुत्र यीशु के मिशन में एक होने के द्वारा एक सुपुत्री के रूप में ईश्वर की कोमलता को महसूस किया। आज मैं सभी माताओं को अपना आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त करना चाहता हूं, विशेषकर उन माताओं को जिनके बच्चे पीड़ित हैं, बीमार से ग्रसित हैं, बच्चे जो हाशिए पर जीवन यापन करते और जो कैद खाने में हैं। अपने बच्चों के लिए परेशान सभी माताओं को हमारी माता मरियम सांत्वना प्रदान करें। संत पापा फ्रांसिस ने वैटिकन में चल रहे परमधम पीठीय प्रतिनिधियों की एक त्रैवार्षिक बैठक के प्रतिभागियों से बृहस्पतिवार को मुलाकात की और टुकड़ों में लड़े जा रहे तृतीय विश्व युद्ध के बीच शांति प्राप्त करने के लिए परमधम पीठ के प्रयासों की ओर ध्यान आकर्षित किया। त्रैवार्षिक सभा में कुल 91 प्रेरितिक राजदूत और 6 स्थायी पर्यवेक्षक भाग ले रहे हैं, जबकि 5 परमधम पीठ प्रतिनिधि स्वास्थ्य या अन्य कारणों से भाग नहीं ले पा रहे हैं। संत पापा ने अपने प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की, जो विश्व के विभिन्न देशों एवं कलीसिया को प्रभावित करते हैं। संत पापा ने गौर किया कि यह मुलाकात महामारी के बाद हो रही है। उन्होंने कहा, कोविड-19 महामारी के तूफान ने हमारे दैनिक जीवन एवं प्रेरित गतिविधियों को विभिन्न प्रकार से बाधित किया है। अब लगता है कि हमारे पीछे इससे भी बुरा होने वाला है, और ईश्वर को धन्यवाद कि हम एक साथ मिल पाए। हालांकि उन्होंने सचेत किया कि यूरोप एवं विश्व पर युद्ध की छाया उतर चुकी है। दुर्भाग्य से यूरोप एवं पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन, परमाणु वृद्धि के जोखिमों और गंभीर आर्थिक एवं सामाजिक परिणामों के कारण अत्यधिक गंभीर युद्ध से हिल गई है। संत पापा ने कहा, एक तीसरा विश्व युद्ध जिसे टुकड़ों में लड़ा जा रहा है, इसने विश्व को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, और परमधम पीठ के प्रतिनिधि विभिन्न देशों में कई संघर्षों के बीच रहते हैं। उन्होंने उन्हें धन्यवाद दिया कि वे लोगों की पीड़ा में उनके बीच पोप का सामीप्य प्रदान करते हैं। संत पापा ने कहा, आप लोगों एवं कलीसिया के लिए पोप की निकटता लाते हैं। आप अत्यधिक घबराहट एवं अशांति के क्षणों में संदर्भ बिंदु हैं। संत पाप ने प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने कार्यों को प्रभु को समर्पित करें जो आज की कलीसिया एवं विश्व में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कलीसिया इस समय सिनोडालिटी पर सिनड की यात्रा में है, जबकि रोमन कुरिया प्रेरितिक संविधान प्रेदिकात एवंजेलियम को लागू कर रही है। संत पापा ने उन दो प्रेरितिक राजदूतों की भी याद की जिनकी मृत्यु कार्य के दौरान हुई है, महाधर्माध्यक्ष जोसेफ चेनोत और महाधर्माध्यक्ष आल्दो जोर्दानो। उन्होंने कहा, हमारे भाई हमारी यात्रा में हमसे पहले चले गए और वे हमें आगे के मार्ग एवं स्वर्ग में अपनी निगाहें टिकाए रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा मंगलवार को जारी एक वक्तव्य में कहा गया है कि पोप के प्रतिनिधियों की त्रैवार्षिक बैठक संत पापा फ्रांसिस के द्वारा बुलाई गई है जो 7 से 10 सितंबर तक चलेगी। वक्तव्य में 4 दिवसीय बैठक के कार्यक्रम के बारे विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके अनुसार बुधवार 7 सितंबर को सुबह 8 बजे सभा की शुरुआत संत पेत्रुस महागिरजा घर में पौत्र यूखरिस्ट के साथ हुई, जिसका अनुष्ठान कार्डिनल परोलिन ने किया। सभा के प्रथम दिन वैटिकन राज्य एवं रोमन कुरिया के अधिकारियों के साथ मुलाकात की गई, जहां उन्होंने परमधम पीठ से मान्यता प्राप्त राजनयिक कोर से भी मुलाकात की। बृहस्पतिवार 8 सितंबर को सुबह 9 बजे प्रेरितिक राजदूतों ने संत पापा फ्रांसिस से मुलाकात की और शाम 7 बजे वे सिस्टीन चैपल में संध्या वंदना में भाग लेंगे। शुक्रवार को वे दलों में कार्य करेंगे, जबकि शनिवार 10 सितंबर को संत माता में सुबह 7:30 बजे संत पापा फ्रांसिस द्वारा यूखरिस्त समारोह के बाद मध्याह्न 12 बजे सभा का अंत किया जाएगा। वैटिकन प्रेस कार्यालय के अनुसार सभा का संचालन वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन कर रहे हैं। उधर कारितास कजाकिस्तान के निदेशक फादर गुइदो त्रेजानी ने बतलाया कि डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों की रक्षा एवं देखभाल करना कजाकिस्तान कारितास के मुख्य कार्य हैं। संत पापा फ्रांसिस की कजाकिस्तान की प्रेरित यात्रा के पूर्व वैटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में फादर गुइदो त्रेजानी ने कजाकिस्तान कारितास के मिशन पर प्रकाश डाला। फादर गुइदो त्रेजानी ने बतलाया कि सभी बच्चों की, किंतु खासकर डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों की प्रशंसा करना, उन्हें प्यार करना और उनकी रक्षा करना कजाकिस्तान कारितास मिशन के केंद्र में है, जो ठोस रूप से उनकी मदद करने हेतु प्रतिबद्ध परियोजनाओं को बढ़ावा देता है। संत पापा फ्रांसिस 13 से 15 सितंबर को कजाकिस्तान की प्रेरितिक यात्रा करेंगे, जहां वे विश्व नेताओं एवं पारंपरिक धर्मों के धर्मगुरुओं के 7वें सम्मेलन में भाग लेंगे। साथ ही वे देश के छोटे काथी समुदाय को विश्वास में सुदृढ़ रहने का प्रोत्साहन देंगे। कजाकिस्तान में कुल आबादी 19 मिलियन में से 1% संख्या काथलिकों की है, जहां मुसलमानों की संख्या 70% और ख्रिस्तियों खासकर रूसी ऑर्थोडॉक्स की संख्या 25% है। उन्होंने कहा, धर्म एक मापदंड नहीं है जिसके द्वारा हम लोगों का चुनाव करते कि वे हमारे साथ काम करें अथवा हम उनके लिए काम करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है उनकी योग्यता, न कि वे किस धर्म के हैं। साक्षात्कार में फादर ने कारितास कजाकिस्तान के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए बतलाया कि यह किस प्रकार अतीत को पार किया है जो साम्यवाद के अधीन था, किंतु अब स्वतंत्र है। कजाकिस्तान, जिसकी सीमा पर रूस स्थित है, 1991 में संयुक्त सोवियत गणराज्य के विघटन तक कम्युनिस्ट शासन के अधीन 15 सोवियत गणराज्यों में से एक था। फादर ने जोर देते हुए कहा कि रूसी सीमा के दक्षिण में होने और वहां रहने वाले बहुत बड़े रूसी एवं यूक्रेनी समुदायों के बावजूद सौभाग्य से फिलहाल यूक्रेन में युद्ध ने कजाकिस्तान में न तो तनाव पैदा किया और न ही संघर्ष। फादर त्रेजानी ने कहा, छोटा संगठन होने के बावजूद कारितास कजाकिस्तान लोगों की दैनिक समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करता है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।